بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. سورة بقرة کی آیت نمبر 4 تک پہنچ گئے. نمبر 5 میں فرماتا ہے اولئک علی ہدن من ربہم، یہ لوگ، یا بہتر کہے ترجمہ دقیق ہے کہ وہ لوگ، وہ اس میں اشارہ ہے، اولئک اس میں اشارہ ہے، وہ دور کی طرف اشارہ ہے، کس کی طرف؟ متقین کی طرف، جن متقین کی صفات بیان کی. تو دور کی طرف اشارہ کی وجہ یہ ہے کہ بعض وقت جو دور ہے اس کی طرف اولئک کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں، بعض وقت عظمت کی وجہ سے، بلندی کی وجہ سے، معنوی لحاظ سے اس کو دور قرار دیتے. جب جتنا عظمت ہو اسی بنا پر ہم کو، ہم اپنے آپ کو اس سے دور سمجھتے ہیں کہ اس کا درجہ بہت بلند ہے، مقام بہت عالی ہے. تو یہاں پر متقین کے درجات بہت عالی ہے، متقین بہت بزرگوار ہے، اسی لیے اولئک کا لفظ استعمال کیا ہے. ایسی صفات رکھنے والے متقین عظیم ہے، وہ ہدایت پر ہے. اعلیٰ اسی چیز کو اوپر ہونے کو کہتے ہیں، مسلط ہونا، اوپر ہونا، اس کو اعلیٰ کہتے. فی نیچے ہونا، اندر ہونا، اسی لیے ہدایت کے اوپر ہے، یہ لوگ ہدایت پر سوار ہے، ہدایت یافتہ ہے. لیکن اس طریقے سے ہدایت کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ ہدایت ایک سواری کی طرح ان کو سواری دیتی ہے، ان کو منزل مقصود تک لے جاتی ہے. اور یہ ہدایت کی سواری پر سوار ہے، مسلط ہے. تو مسلط ہونا، سوار ہونا اور محکوم نہیں ہے، مغلوب نہیں ہے، بلکہ غالب ہے، یہ سمجھمات ہے. ایسے متقین جن کی یہ صفات ہو، ہدایت پر غالب ہے، ہدایت کی سواری پر سوار ہے، اور ہدایت کی سواری کے ذریعے منزل کی طرف روان دوان ہے. اولئک علی ہدن، ہدایت پر سوار ہے. بس تقوی کی یہ صفات ہے، متقی کی یہ صفات ہے. جس کے پاس یہ صفات ہو وہ متقی ہدایت پاتا ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے. پہلے کہا قرآن اس کے لیے کتاب ہدایت ہے، ابھی کیا فرماتے، یہ لوگ ہدایت پر سوار ہے. مطلقاً ہدایت قرآن کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے، امام کے ذریعے، عقل کے ذریعے، خلاصہ مطلقاً ہدایت پر یہ لوگ سوار ہے، ہدایت کے راستے پر گامزن ہے. پتہ چلا یہاں سے کیا، یہ متقی ہونا باعث ہدایت ہے، قرآن کے ذریعے ہدایت پانے کے ذریعے متقی ہونا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں بالکل ہدایت پر سوار ہے قرآن، ہدایت کے تمام راستے قرآن، پیغمبر، فطرت، سب سے ہدایت یہ وصول کرتے. ایسے لوگ سارے اچھی باتوں کو اپنا لیتے ہیں، چاہے فطرتاً خدا نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہو. سورہ وشمس میں کیا فرماتے ہیں، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خدا نے الہام کیا نفس انسانی کو کہ کیا گناہ ہے، کیا تقویٰ ہے. اور اسی طرح سے پیغمبر اہل بیت قرآن ناطق ہے، कुरान के साथ साथ ये भी हादी है और मुफस्सिर कुरान है, मुबय्यिन कुरान। कुरान के साथ सूरह जुम्मा में फरमाता है क्या, तालीम किताब के साथ हिकमत की तालीम देता है। तो कुरान के अलावा पैगंबरों अहले बैत से भी हिदायत वसूल करते हैं। गालिबन अर्ज किया, जो कुरान से हिदायत वसूल नहीं कर सकते हैं वो अहले बैत से भी वो हिदायत वसूल नहीं कर सकते हैं। कुरान से हिदायत हासिल करने का जरिया खुद कुरान ने कहा तक्वा है। तक्वा कैसे पैदा होता है? ईमान बिल गैब से और खुदा के साथ अमली राबिता से तक्वा पैदा होता है। एक अकायद से, ईमान बिल गैब से, दूसरा नमाज के जरिए अमली राबिता से, तीसरा हुकूकुल इबाद अदा करने के जरिए जैसा ज़कात है, चौथा माद पर ईमान हो तो तकवा होता है, हिसाब किताब पर ईमान बायस तकवा है। वही ईमान बिल गैब ना, असल बुनियाद तो ईमान बिल गैब है, क्योंकि अकीदा होना चाहिए, अकीदा बुनियाद है, अकीदा उस अकीदे के बुनियाद पर ईमान बिल गैब में, ईमान बिल्लाह, ईमान बेमा उनजिला वमा उनजिला मिन कबलिक, ये सब दाखिल है। हत्ता माद भी दाखिल है, लेकिन अलग भी बयान किया है। माद पर ईमान लाना ईमान बिल गैब है, जैसे रिवायात ने कहा इमाम ज़माना पर ईमान लाना, यकीन करना क्या है? ईमान बिल गैब है। किस चीज़ को भी आप अभी मुशाहिदा नहीं कर सकते हैं, हवास पंचगाना के जरिए इदराक नहीं कर सकते, उसको मानना ईमान बिल गैब है। अलबत्त जिन चीज़ों को हम मानते हैं ईमान बिल गैब कि जो मिसदाक है, उनके लिए कवी दलील की ज़रूरत है, कवी दलील की ज़रूरत है। जो भी सामने ना हो उसको थोड़ा माना है। ये जो खराफाती लोग है, दकियानुसी लोग है, जाहिल लोग है, क्या नाम है, खराफात के मानने वाले लोग, वो सब ऐसी चीज़ों को मानते हैं जिनके ऊपर कोई दलील नहीं है। नहीं, ईमान बिल गैब यानी हवा से पंचगाना से बाहर है, लेकिन अपनी जगह पर कवी दलील है, अकली दलील है, अकली मजबूत तरीन दलील है। आप ने अकायद के बहस में यकीनन मुताले किया है कि साइंस और तजुर्बा और मुशाहिदा, जिसको सबसे बड़ी दलील मानते हैं हमारे आजकल की दुनिया में, और कदीम ज़माने में यहूदियों ने भी यही कहा, खुदा को जहरतन दिखाओ, अरिनल्लाहा जहरतन। तो ये यही जो साइंस है, तजुर्बे के ज़रिए आप इल्म हासिल करते हैं। अक्ल ना हो तो इल्म हासिल करने को कोई रास्ता नहीं है। क्यों? आपने एक साइंसी फरमूल, साइंसी एक उसूल कशिफ किया, मेडिकल को हो, इंजीनियरिंग को हो, एटम का हो, 10, 20, 100, 1000, 2000, 3000 तजुर्बा किया, 4000 तजुर्बा किया, कशिफ किया कि इस बीमारी के ये सबब है, इस बीमारी का जब ये सबब है इस तरीके से इलाज होगा। कितने तजुर्बे किए? 4-5 हज़ार तजुर्बे किया। उसके बाद कहते हैं सारे बशर अगर इस बीमारी में मुबतला हो जाए, उसकी क्या है, यही सबब है और यही इलाज है। आपने 4-5 हज़ार का तजुर्बा किया है कुल बशर के लिए, कैसे कहते हैं? यहाँ पर अक्ल की ज़रूरत है कि अक्ल मदद करे तजुर्बे की। तजुर्बा अक्ल की मदद से कानून बना सकता है, अक्ल मदद ना करे। आप जो मुशाहिदा करते हैं, हिस करते हैं, एहसास करते हैं, तजुर्बे के गिरफ्त में आता है वो चंद हज़ार है। इस दौर के सारे डॉक्टर मिलकर तजुर्बा करें तो आने वाले 100 साल के बाद के डॉक्टर के तजुर्बे को क्या करेंगे आप? इसीलिए तजुर्बे के जरिए इल्म हासिल करते हैं, लेकिन जब तक अक्ल उसकी मदद न करे, तजुर्बे के जरिए कवाइद कुल्लिया, उसूल, हासिल नहीं कर सकते। जितना आपने तजुर्बा किया उतने के बारे में आप कह सकते हैं, जितने तजुर्बा नहीं किए उसके बारे में आपकी दलील क्या है? तजुर्बा है, मुशाहिदा है ना। कितने को देखा है? 10,000 को देखा है। 10,000 के बारे में कहो ये बीमारी 10,000 मकामात पर हमने देखा है कि फलान जरासीम से पैदा होता है। आप इस सब के बारे में आप कैसे कहते हैं? यहां पर अकली दलाइल की मदद से उस तजुर्बे को आम करते हैं, कहते हैं कि हर जगह हर जमान रहती दुनिया तक इस बीमारी का ये सबब है। ये उलमा मिसाल देते हैं कि हर जानवर को, इंसान हो हैवान हो, सबको देखा जब चबाते हैं, खाना खाता है ठीक है, मुंह में किसी चीज़ को चबाते हैं तो क्या होता है? ऊपर के हिस्से नहीं हिलता है, नीचे के हिस्से हिलता है या ऊपर के हिस्से हिलता है? नीचे का हिस्सा ना। इंसान के जब चबाता है तो नीचे का, देखिए जबड़े के कौन सा हिस्सा हिलता है? नीचे वाला हिस्सा। हैवान है, गाय है, गोसफंद है, जो भी हो, बिल्ली है, कुत्ता है, हजारों को देखा, देखा कि खाना खाते वक्त क्या है, निचले हिस्सा हिलता है, तो कहेगा क्या? बस हमने तजुर्बा किया 10,000 मकामात पर, हमने ये देखा बस हर हैवान के खाना खाते वक्त ऐसा होता है। लेकिन ये एक दिन क्या हुआ, मगरमच्छ के पास पहुंच गया, बच कर निकल आया, देखा मगरमच्छ क्या करता है, उसके ऊपर का हिस्सा हिलता है, नीचे का हिस्सा नहीं हिलता है, उसके मुंह के ऊपर का हिस्सा हिलता है खाते वक्त, नीचे का हिस्सा हरकत नहीं करता, उसके जिस्म के साथ मुत्तसिल है निचला हिस्सा। लेकिन हर अगर सिर्फ मुशाहिदा दलील हो, कभी कायदे कुल्लिया नहीं बना सकते, उसकी मदद अकल के जरिए मदद की ज़रूरत है। अब अकल के जरिए कैसे मदद करते, मंतिक में इस पर बहस हो चुका है, फलसफे में बहस हो चुका है। तो अर्ज़ ये है कि खुद साइंस यानी जिस इल्म की दलील मुशाहिदा है वो मोहताज है अकल की तरफ। इसी तरह से हम तौहीद में, खुदा में, माद में, नबुवत में अकली दलाइल के जरिए खुदा को मानते हैं। अकुल आलम क्या है? कलामुल्ला है। फलासफा कहते हैं क्या? वह कलिमतिन मिन हो, कुरान में हजरत ईसा को क्या फरमाया, वह कलिमतिन मिन हो इस्महु मसीह ईसा इब्न मरियम। कलाम का काम क्या है? कलाम किसी मतलब पर दलालत करता है, कलाम से कोई मतलब समझ में आता है ना। और कायनात के हर शय से खुदा की अजमत समझ में आती है, हर शय से खुदा की इल्मियत, कुदरत, हिकमत, रहमानियत, रहीमियत, फैज़, करम, जूत, यानी तो इसीलिए हर शेय कलामुल्ला है। और साथ हर शेय आयतुल्ला है कहते, ये कलामुल्ला के ना, मैंने अर्ज किया फलसफी और आनी लिहाज से इसको कलामुल्ला नहीं कहा, मगर इनके वही कलिमतिन जो हजरत ईसा पर इतलाक आया है। मौला इमाम ज़माने के बारे में भी बाज़ तफासिर क्या कहते हैं, कलिमतुल्लाह। हाँ जी, तो क्या नाम है दूसरा, आयतुल्लाह है। हर शेय खुदा की निशानी है, आप निशानी से साहबी निशानी तक पहुँचते हैं, खुदा के निशानी से यह आलम भरा हुआ है। सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, हम अपनी निशानियों को दिखाते हैं, उनको दिखाएंगे, अनकरीब दिखाएंगे। अगर जिस सीन का माना अनकरीब है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर जगह ये माना हो, हम अपनी निशानियों को दिखाते हैं इंसानों को, फिल आफाक कायनात में, कायनात के हर शे हमारी निशानी है, खुदा की निशानी है। व फी अनफुसिहिम, उनके नफ्स के अंदर, आंखों के सिस्टम को देखिए, ये सिस्टम किसी इल्मी नक्शे के बगैर ऐसा सिस्टम वजूद में आ सकता है? तस्वीर पढ़ती है, फिर तस्वीर को क्या करती है, उलट करती है, और फिर क्या नाम है, लाखों सेल्स इसको मुंतकिल करती है। रंग रंगीन टीवी है, हमारे हमारी आंखों की यह हालत है। मसलन जानवर सुना है, बस अवकात उनके आंखें ब्लैक एंड वाइट है। तो खुलासा यही आंख के जरिए कोई तस्वीर देखने के लिए लाखों सेल्स के तआवुन की जरूरत है, खास नज़्म के साथ। तो हर शे क्या है, इसीलिए शादी का एक जुमला है, हर दरख्त के हर पत्ते जो है दफ्तरी अज मारिफत किरदगार, दरख्त के हर पत्ता खुदा की मारिफत का एक दफ्तर है, एक कापी है। जितने आलम में असरार कशिफ होता है खुदा की निशानी है। बल्कि यही साइंसदान, हत्ता वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, वो भी हर शेय की हिकमत ढूंढते हैं कि इस चीज का क्या फायदा है, इस चीज का क्या फायदा है, इस चीज की क्या हिकमत है। इसका मतलब ये कि आप मानते हैं बनाने वाले साहब हिकमत है, इसीलिए ढूंढते हैं। अगर आप समझते हैं कि बेशुऊर बेजान मादा ने इंसान को वजूद में लाया है, सोचे समझे बगैर इंसान का नक्शा बन गया है इत्तेफाक से, तो हर चीज में क्यों हिकमत ढूंढते हैं? हर चीज में हिकमत ढूंढने का मतलब ये कि आप भी मिन हैसु ला यशऊर, एहसास के बगैर मानते हैं कि इनके बनाने वाले ने इसके हर जुज को बनाया है। किसके लिए बनाया है? किसी मकसद के लिए। खुदा हकीम है बनाने वाला। बाज़ औक़ात यही सवाल होता है कि साइंसदान है खुदा को नहीं मानता है, उसकी वजह यही साइंसदान जो खुदा को नहीं मानता है हिकमत के पीछे मेहनत करता है, फिर खुदा को क्यों नहीं मानता है? उसकी वजह किसी ने बहुत खूबसूरत मिसाल दी है। एक आदमी है आईना बनाने वाला, दिन भर आईना बनाता है, अपने चेहरे पर जो धब्बा है वो नजर नहीं आता है, लेकिन आईना खरीदने वाला या आईने में देखने वाला पहली निगाह से अपने चेहरे के धब्बा को देख सकता है। आईने में देखने वाला ने आईने की तरफ देखा है अपने चेहरे की तरफ देखने के लिए, आईने बनाने वाले ने आईने की तरफ देखा है अपने चेहरे को देखने के लिए नहीं, बल्कि आईना को बनाने के लिए। ये साइंसदान साइंसी काम करता है, मकसद चीजें बनाना है, शोहरत कमाना है, भल काम करना है। उसके जरिए खुदा तक पहुंचना उसके मद्देनजर ही नहीं था। उसके जरिए खुदा तक पहुंचना मद्देनजर होता तो हर साइंसदान खुदा परस होना चाहिए। बल्कि खुद मगरबी कुछ मुफक्किरीन के जुमलात है, आपने भी पढ़ा होगा किताबों में, कहते जो मेडिकल है या फिजिक है, खुलासा उन मैदानों में पढ़ने वाले खुदा परस हो जाते हैं, जो दूसरे सियासी मियासी इस कस्म के मजहबी मगरब की बात कर रहा हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी रिसर्च करने वाले ज़्यादातर मुनकर खुदा हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर खुदा नजर आता है ना, खुदा के आसार इस आलम में नजर आता है। हर शेय खुदा की आयत है, निशानी है। तो इसीलिए ईमान बिल गैब लाते हैं दलील के साथ। बाज़ वक़्त मैंने इसलिए ये कहा, एक कोई ये ना एतराज करे कि भाई गैब की बातों के लिए दलील नहीं, इंतहाई मजबूत दलील के साथ। खुद साइंस अकल के बगैर मजबूत नहीं होती है, तो अकायद इस्लामी अक्ल के जरिए मजबूत हो जाती है। ये एक तो दलील के साथ मानते हैं। कुछ लोग वही कहते हैं कि मजहबी लोग अहले तहकीक नहीं होते हैं, मजहबी लोग अहले तहकीक नहीं होते हैं, अब सुनी सुनाई बातों को मानते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। यानी हकीकत मैंने कहा तो हर मजहबी, लेकिन जो हकीकतन मजहबी अहले तहकीक है, समझदार लोग है, वो दूसरों से ज्यादा मुहक्किक, वो दूसरों से ज्यादा मुहक्किक। आप मगरिब वाले कहते
कहते मजहबी लोगों को कहते अहले तकलीद है, तकलीद वाले हैं। मजहबी लोग तकलीद करते हैं और साइंसी लोग, गैर मजहबी लोग क्या करते हैं, तहकीक करते हैं। लेकिन एक ये है कि ये बिल्कुल झूठ है, इस पर काफी तफसीली गुफ्तगू की जरूरत है। और दूसरा ये है कि मजहबी लोग जो तहकीक करते हैं या गैर मजहबी लोग जो तहकीक, गैर मजहबी लोग जब किसी चीज़ का तजुर्बा करते हैं, तजुर्बा के सामने हथियार डाल देते हैं, सर तस्लीम खम करते हैं ना, तजुर्बा के सामने क्या करते हैं, सर तस्लीम खम करते हैं। और यही तजुर्बा मुमकिन 20 साल के बाद गलत साबित हो जाए, उसके बावजूद सर तस्लीम खम करते हैं। मजहबी लोग खुदा के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। हम हर तजुर्बे से ज़्यादा खुदा को मोतबर समझते हैं, हर तजुर्बे से ज़्यादा इमाम और पैगंबर की बात को क्या समझते हैं, मोतबर समझते हैं। ठीक है, ये इंतहाई तहकीक करना है, ये कलाम अल्लाह है या नहीं है, इंतहाई तहकीक करना है, ये कलाम रसूल या कलाम इमाम है या नहीं, इसको तो मुकम्मल तहकीक करना है। तहकीक करने के बाद अगर साबित हुआ ये हुक्म खुदा है, हुक्म रसूल है, हुक्म इमाम है, फिर जिस तरह से आप तजुर्बे के सामने सर तस्लीम खम करते हैं, हम खुदा और रसूल इमाम के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। आप तजुर्बे के सामने सर तस्लीम खम करने को आप क्या समझते हैं, तहकीक समझते हैं। हम खुदा के सामने सर तस्लीम खम करने को क्या समझते हैं, तहकीक समझते हैं। हकीकी इल्म खुदा के पास है, हमारा तजुर्बा हज़ार गलतियाँ कर सकता है। तारीख इल्म में बशर गवाह है कि बशर कितनी गलतियाँ करता है, कर चुका है, करता जा रहा है। यूमिनून बिलगैब, में गैब पर ईमान लाते हैं, मजबूत दलाइल के साथ ईमान बिलगैब लाते हैं, खुदा पर ईमान लाते हैं। और जो कुछ पैगंबर पर वह, खुद पैगंबर तो हाजिर है लेकिन वही पैगंबर जिब्राइल ने जो वही लाया वो गैब है, उस पर ईमान लाते हैं। और अंबियाए साबिक पर ईमान लाते हैं, कयामत पर ईमान लाते हैं। और फिर उस वो ईमान बुनियाद है, उस ईमान के ऊपर बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की क्या है, बुनियाद होती है, एक उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है। उस बुनियाद पर कौन सी बिल्डिंग बनाई जाती है, यही जब खुदा को मान लिया तो खुदा के साथ राबिता बरकरार रखो। मानने के बाद भूलने से फायदा नहीं होता है, जानना अलग है, याद रखना अलग है। एक बात को आप जानते हो, याद ना रखे बेअसर हो जाएगा, तो याद रखने की ज़रूरत है। नमाज क्या है, याद है खुदा के लिए है, खुदा की मारिफत के बाद हमेशा खुदा के साथ राबिता बरकरार रखो, तो तब बंदगी के नियामतें, खुदा की नियामतें तुम्हें हासिल होगी, फायदा हासिल होगा। और दूसरा, बंदगान खुदा का हक अदा करो ताकि मुआशरे में अदल व इंसाफ कायम हो जाए। और इसकी बुनियाद क्या है, एक तरफ ईमान बिल गैब खुदा है, दूसरी तरफ महाद है, हिसाब किताब हो। मुमकिन है मसल आइमा अथार अम्बिया इलाही, इश्क इलाही इतनी ज़्यादा उनके दिल में है, माद न भी हो तो वो क्या है, हम अहल अमल है, इश्क खुदा है उनके दिल में। लेकिन आम तौर पर बशर के लिए माद की ज़रूरत है, कयामत की ज़रूरत है, हिसाब किताब की ज़रूरत है, सवाब अकाब की ज़रूरत है। इसीलिए इंसान की तरबियत में वह बिल आखिरत हम यूकिन, आखिरत पर भी यकीन की ज़रूरत हुआ। मशहूर वाक़ा है ना कि अराबी आया पैगंबर के खिदमत में दीन सीखने के लिए, पैगंबर ने किसी सहाबी के साथ उसको भेजा, फरमाया इसको दीन की तालीम दो, चला गया। सहाबी ने उसको सूरह ज़लज़ल के आयत, मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जब उसने ये सुना कहा कि वाकई ये कुरान है, कहा कुरान है, बस जब जर्र के बराबर जो संगीन है वो भी खैर हो, खैर काम किया हो, वो भी कयामत के दिन देख लेगा, जर्र के बराबर जो शर काम करे, गलत काम करे, वो भी देख लेगा, कहा कि काफ़ी है, फिर मुझे पैगाम मिल गया, नेक काम करना है, बुरा काम से बचना है। चला गया। जब वो जल्दी वापस आया, पैगंबर ने पूछा, भाई इतनी जल्दी? फरमाया कि उसके पास हौसला नहीं था, जल्दी जाना चाहता था। आपने जब पूछा क्या पेश आया, तो उसने कहा, वाकया बताया, तो पैगंबर ने फरमाया, रजा फकीहन, दीन शिनास होकर चला गया। कुछ लोग असल पॉइंट को लेते ना, बसीरत वही है, असल नुक्ता को, मरकजी नुक्ता को समझते हैं, जाने मतलब कुछ लोगों के समझ में आता है, कुछ लोग सिर्फ ऊपर की बातों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जाने मतलब की तरफ जहन उनका नहीं जाते। जो साहिब बसीरत थे, चश्म दिल रखते हैं, वो बातिन को, असल जान को समझते हैं। तो ज़ाहिर कयामत पर ईमान हो तो इंसान की तरबियत, अलबत्त बाज़ वक़्त कुछ लोग मुसलमान होने के बाद भी कयामत को बेअसर करने की कोशिश करते हैं। शैतान के अवामिल हर एक के लिए है ना। इमाम खुमैनी कहते थे, आगा शेख, शेख यानी मौलाना जो सफ़ेद अमामों वाला है, उनको गुमराह करने के लिए शेख शैतान आएगा, शैतान शेख बनकर आएगा, और सैयद को गुमराह करने के लिए सैयद बनकर आएगा, यानी हर एक के लिए मुनासिब शैतान आता है। अभी हम शिओं को गुमराह करने के लिए शिया बनकर आएगा, क्या कहेगा? भाई विलायत हो, अमल की ज़रूरत नहीं है। पैगंबर अहले बैत की पूरी कोशिश ये है कि शिओं को अहले मारिफत और अहले अमल बनाए। दो पर दे दे, पर इल्म पर अमल, लेकिन खुद शिया बनकर कहते हैं कि आपको अमल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जन्नत आपके लिए बुक है। एक शिया बनकर शिया जबान में ये बात करता है, तो जाहिर शैतान मुख्तलिफ बहस में आता है गुमराह करने के लिए। तो बिल आखिरत हम ये कुनियन, आखिरत पर यकीन रखते हैं, और उसके बाद फरमाते, ओला के अला हुदन मिन रब्बिहिम, ये लोग हिदायत पर सवार है। हिदायत ऐसे ऐसी सवारी की तरह है जो राम है, राम सवारी, हिदायत पर आसानी से आते, जब अहले तकवा हो हिदायत पाते, हिदायत पाना मुश्किल नहीं होता है। अला हुदन मिन रब्बिहिम, और उलाएक हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग मुफ्लिह है, फलाह पाने वाले हैं, फलाह कामयाब, कामयाब लोग हैं, नजात पाने वाले लोग हैं। क्योंकि इंसान का मकसद खुदा है, कुर्ब खुदा है, उस मकसद के लिए हिदायत की ज़रूरत, हिदायत के लिए तकवा की ज़रूरत, तकवा के लिए अकीदे की ज़रूरत है, अकीदा तकवा, और अकीदे तकवा ये कबल इस्लाम, यानी अपनी फितरत को मसख नहीं किया है। अगर फितरत को इस्लाम के बाद भी न मसख करेंगे तो खराब हो जाएंगे, दीन के पैगाम नहीं ले सकते। हक मानने की सिफत इस्लाम से पहले हो तो ये पैगंबर की आवाज़ को लब्बैक कहेगा, हक मानने की सिफत ना हो तो पैगंबर की आवाज़ को लब्बैक नहीं कहेगा। अब इस्लाम कबूल करने के बाद भी हक मानने की सिफत ना हो, अपने मफादात की बातें मानना मानने की आदत हो, हर्फ हक मानने की आदत ना हो, गुमराह हो जाएगा, मुसलमान होने के बाद भी मुनाफिक बन जाएगा। इसीलिए यानी जो जिनका अकायद सही है, अकायद सही है, अकायद के बाद अहले नमाज है, अहले ज़कात है, यानी खुदा के साथ राबिता, खल्क खुदा के साथ राबिता, और आखिरत पर यकीन रखने वाले, ये लोग बातकवा होंगे, अहले तकवा बनेंगे, अहले तकवा कुरान से हिदायत हासिल करेंगे, न सिर्फ कुरान से बल्कि अहले बैत से, क्योंकि कुरान से बातकवा लोग हिदायत हासिल करते हैं। अहले बैत से भी क्या फरमाया, अली इमामुल मुत्तकीन है, मुत्तकीन का इमाम है, इमाम है, पंजुम शिशुम की हदीस है, फरमाते जो खुदा के मुती है वो हमारा वली है, जो खुदा के नाफरमान है वो हमारा वली नहीं है। तो हिदायत पाएंगे قرآن کے ذریعے بھی، عترت کے ذریعے بھی، جب ہدایت پائیں گے تو خدا تک پہنچ جائیں گے، ہدایت پائیں گے تو پیغمبر و ائمہ کی قیادت میں خدا تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ خدا منزل ہے نا، ہدف خدا ہے، خدا تک پہنچنا ہے. اولئک هم المفلحون، یہ تو کیا ہوا، کہاں سے چلے ہم؟ عقائد اور عمل صحیح ہو تو تقویٰ ہے، تقویٰ ہو تو ہدایت ہے، ہدایت قرآن اور ہدایت عترت، اور وہ حاصل ہونے کے بعد انسان فلاح پاتا ہے، نجات پاتا ہے، مقصد حاصل ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی کیا، قرب خدا حاصل کرتا ہے، جو مقصد خلقت ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا سواء، بے شک، ان قرآن میں کثرت سے آپ دیکھیں گے بے شک، یقیناً کا معنی دیتا ہے، عربی تقسیمات میں اس کو حرف کہتے ہیں، حروف مشبہ ہے، یہ الذین آیا ہے، الذین نہ آتا تو ہم اس کو اس کے اعرابی حالت کو بتاتے ہیں، اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کو زبر دے گا، لیکن الذین کیا ہے، اسم موصول ہے، اسم موصول مبنی ہوتا ہے، مبنی وہ اسم ہے جس پر کوئی حرکت ظاہر نہیں ہوتا، حرکت نہیں آتا ہے، اس کے جو حرکت ہے ہمیشہ رہتا ہے، تبدیلی تحقیق، بے تحقیق سے آپ قرآن کے ترجموں کو دیکھیں، بے تحقیق، یقیناً، بے شک، یہ معنی کریں گے. تو ان الذین کفروا، وہ لوگ، الذین، اللاتی، الذی، یہ سب کے سب کیا ہے، اسماء موصولہ ہے، عربی زبان میں اسم یا معرب ہے یا مبنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے کہا تھوڑا سا ادبی پہلو سن سن کے ممکن یاد رہے، کوئی حرج نہیں ہے. مبنی یعنی وہ اسماء، وہ اسم جس پر جو زبر زیر ہے اسی طرح سے رہتا ہے، کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے، اس کو مبنی کہتے ہیں. معرب اس اسم کو کہتے ہیں جس کا زبر زیر، جس کے زبر زیر میں تبدیلی آتی ہے. اسی انا، دیکھو الذین پر آیا، الذین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہی انا اگر علی پر آتا ہے، ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، دیکھو زبر دیا نا، انا آ کر انا انا ایک جیسا ہے، کیا کیا، زبر دیا، دو پہ زبر دیا، ٹھیک ہے. تو اسم کا یعنی جو جس اسم کے زبر زیر فرق ہوتا ہے اس کو معرب کہتے ہیں. سارے اسما عربی زبان میں معرب ہے، مبنی اسما کم ہے، جو اسما مبنی ہے یعنی جن کے زبر زیر فرق نہیں ہوتا ہے، ایک ہی شکل میں رہتا ہے، وہ کم ہے. لیکن عام طور پر جتنے اسم عربی میں آتا ہے اس کے زبر زیر فرق ہوتا ہے، کبھی، ہاں جی دیکھو نا، ان الذین، دیکھو ان کے بعد دیکھو الذین، الذین ہے، اسی طرح سے آئے گا، جہاں بھی آپ دیکھیں گے ان کے بغیر الذین آیا ہے، یا ان کے ساتھ آیا ہے، یا کسی اور کے ساتھ آیا ہے، الذین، الذین ہی آئے گا. لیکن یہی محمد کو دیکھے، اشہد ان محمدن، ان کے بعد کیا آیا، محمد کا زبر آیا نا، دو زبر، ہاں جی، ہاں جی. تو اب میں مثال دوں، شب قدر کیا پڑھتے ہیں، بی محمد، بی محمد، بی علی، بی علی، دیکھو بے آیا تو کیا ہو گیا، دو زیر دیا. ھذا محمد من کنت مولا فعلی مولا، پیش آ گیا، دیکھو بدل جاتا ہے. تو جن، عام طور پر 90% عربی زبان میں اسما کیا ہے، معرب ہے، معرب کے زبر زیر بدل جاتا ہے، बदलने वाला वही जो पहले आता है, इन जैसा, काफ जैसा, बे जैसा, फी जैसा, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं।
अल्लादीना में तब्दीली नहीं
आ
आई।
नहीं आई है क्योंकि ये इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल मबनी है। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर अख्तियार किया, जिन्होंने कुफर अख्तियार किया। ये क्या कुफर अख्तियार किया? उर्दू में क्या है? फेल माजी है, गुज़श्ता फेल माजी है। अरबी में भी फेल माजी है और फेल माजी भी मबनी होता है। इन्नल्लज़ीना कफरू सदकू मा आहदुल्लाह, रजहू कदबू, मतलब इसी एक अंदाज में आएगा, ठीक है। इन्नल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया, सवा उन बराबर है, ये इसमें मोरफ है, सवा उन बराबर है, अलैहिम अंजरतहुम, उनके लिए बराबर है, चाहे आप उनको डराओ, अमलम तुंजिरहुम, या उनको मत डराओ, उनको डराओ तब भी ईमान नहीं लाएंगे, नहीं डराओ तो तब भी ईमान नहीं लाएंगे, ला यूमिनून, ईमान नहीं लाएंगे। यहां पर पहला मुत्तकीन के बारे में फरमाया, मुत्तकीन क्या है? ईमान लाते हैं, ईमान लाएंगे, ईमान लाने वाले हैं। लेकिन काफिरीन के बारे में फरमाया क्या? कि ये ऐसे लोग थे, चाहे आप डराएंगे, हिदायत की बात नहीं की, मुत्तकीन में हिदायत की बात की, यहां पर इंतजार की बात, डराएंगे या नहीं डराएंगे, दोनों सूरतों में ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। इसका फर्क ये है कि इंतजार वही हिदायत है, यानी मोमिनीन की हिदायत करें, बातकवा लोगों की हिदायत करेंगे तो असर होता है। अर्ज के एक तकवा क्या है? कबल इस्लाम है, यानी अपने आप को मसख नहीं किया है, सही बात मानने के लिए तैयार है, तो क्या है, असर करेगा हिदायत। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को हर सही बात मानने से महरूम किया है, अपने अफकार के जरिए या अपने आमाल के जरिए या दोनों के जरिए। मसलन नज़रिया ये है कि जो चीज़ नज़र नहीं आती हम उसको नहीं मानते, तो आप खुदा के बारे में जितनी बात करेंगे वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेज़ ने कहा है। हाँ जी, मसलन या किरदार के लिहाज से इतने बुरे किरदार वाले हैं कि कोई हर्फ हक, सही बात का असर ही नहीं होता है। इसराइल से कहो रहम करो फिलिस्तीनियों पर, कितने कत्लाम, छोटे छोटे बच्चों की हालत देखे, कोई असर नहीं होता। बाइडेन वहां से आ गया है इधर, किसके लिए? कातिलीन की हिमायत करने के लिए, तुम कत्ल करो हम तुम्हारी हिमायत करते हैं। यानी जिन उसकी वजह क्या, हिदायत क्यों नहीं पाते? हिदायत करने के लिए सबसे बेहतर तरीका इंतजार है। अंबिया के बारे में क्या कहता है? मुबशिरीन व मुंजरीन, बशीरन व नजीरा, अंबिया बशीर है और इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नजीरा, अंबिया सब मुबशिरन और मुंजिर है, डराने वाले हैं, बशारत देने वाले और डराने वाले, डराने का असर ज्यादा होता है। आप देखें नमाज शब की सवाब कितने हैं, दूसरी नमाज से कहीं ज्यादा है नमाज शब के। इतनी पैगंबर से फरमाया, फतहज्जद नाफिलतन लक असा यबअथक रब्बुका मकामन महमूदा, नमाज शब पढ़ो ताकि खुदा आपको मकाम महमूद पर फाइज करे। इतनी अजमत वाली नमाज, लेकिन वाजिब नहीं है तो ना पढ़े, जहन्नम नहीं जाएगा कोई, पढ़े तो दर्जा बहुत बुलंद हो जाएगा, न पढ़े तो सजा नहीं होगी, जहन्नम नहीं होगी, इसी बिना पर पढ़ने वाले कम हैं। लेकिन अगर उसी को वाजिब करते हैं तो सब पढ़ते हैं नमाज शब शब। रात के क्या है, 4 बजा, मसलन सुबह की नमाज से आधा घंटा पहला, 1 घंटा पहले क्या है, नमाज शब पढ़ते। क्यों? नमाज वाजिब ना पढ़े तो सजा होगी, अजाब होगी। इंसान डरता है इंतजार से, जिसमें खतरा हो उससे डरता है, तो बशारत के जरिए भी हिदायत कर सकते हैं, तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हारा नाम मशहूर हो जाएगा, ये होगा वो होगा, वो भी इंसान को बाअमल बनाने के लिए, राह रास्त पर लाने के लिए मुअस्सिर है। लेकिन जितने डराना मुअस्सिर है उतना बशारत मुअस्सिर नहीं। दिन सारे तरबियत के, तासीर के, इंसान को बेदार करने के, इंसान को राह हक की तरफ लाने के सारे अवामिल को बेरुई कार लाया है, लेकिन इंसान का असर सबसे ज्यादा है। इसीलिए ये अंदर तो हम अमलम तुंजुर हम की जगह पर ये भी रख सकते थे, अहदई तो हम अमलम तहदी, या रसोल्ला आप हिदायत करेंगे या हिदायत नहीं करेंगे, ये लोग हिदायत पाने वाले नहीं है। लेकिन उसकी जगह पर हिदायत के सबसे मुअस्सिर तरीके का नाम लिया, चाहे आप इंतजार करेंगे चाहे इंतजार नहीं करेंगे, ये लोग मानने वाले नहीं हैं। उलमा को भी हुक्म है, आप जानते हैं ये कुरान मजीद में है, फलौला नफरा। असल वाक़ ये था कि पैगंबर खुदा के पास अक्सर जंग पैगंबर के बगैर पेश आई ना, तो लोग पैगंबर के पास रहते थे, और तो मुजाहिदीन पैगंबर के पास जो आयात वही नाजिल होती थी उससे महरूम होते थे, प्लस इसको से बस, या कुछ लोग जहाज जाना चाहते थे जहाज से महरूम होते थे इधर रहे, तो ये मसाइल पेश आया, तो आयत नाजिल हुई, फलौला नफर मिन कुल फिरकतिन ताइफा, हर गुरो से, हर फिरके से एक गुरो क्यों नहीं जाते हैं, किस चीज के लिए? तफक्कहु फिद्दीन, फिक्र दीन हासिल करने के लिए, दीन समझने के लिए। वयुंदिरु कौमहुम इदा रजउ इलैहिम, फिर डराए, इंदार कहा है, जाए पैगंबर के पास, दीन की मारिफत हासिल करे, और दीन के मारिफत हासिल करने के बाद क्या करे, वयुंदिरु कौमहुम, डराए अपनी कौम को, इदा रजउ इलैहिम, अगर पलट के आ गए। कुछ लोग कहते हैं ना, आप अपने वतन पलट के आओ, कुरान ने हुक्म दिया है क्या अपने अपने वतन में पलट कर आने के? ये तहरीफ है, तफसीर है। कुरान कहते अगर पलट कर आ गए, पलट कर आ गए तो, क्योंकि असल में ज़रूरत है इंसानी माशरे की, ज़रूरत आपकी जिम्मेदारी दीन के पैगाम पहुंचाना, इंसानों की तरबियत करना। अपने इलाके में बेहतर हालात, हालात को बेहतर समझते हैं, रसूमात को, मुश्किलात को, इस मसाइल को बेहतर समझते, तो बेहतर काम कर सकते हैं, वाज़ है। वरना असल मसले दीन की खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है। दीन वो सबसे बड़ी नेमत है जिसके ज़रिए इंसानों की खिदमत कर सकते हैं। तो इसीलिए खुद पैगंबर खुदा मक्का वाले थे, मदीने में थे, जब फतह मक्का के वक्त और हजतुल वदा के वक्त जब आप मक्का चले गए, तो अंसार ने शर्त की थी कि आप मक्के में अपने दौलत सरा में नहीं जाएंगे। पैगंबर ने भी इस शर्त के बिना पर बाहर खेमा लगा कर बैठ गए, अपने दौलत सरा में नहीं गए। अली अलैहि सलाम के भी शहर वही मक्का था, वहाँ पर नहीं गए, मदीने में रहे। फिर अहले बैत के शहर मदीने बन गया, लेकिन बाद में अली अलैहि सलाम कहाँ आए, कोफा आए। खुलासा मयार ये है कि दीन की खिदमत कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी उलमा को भी क्या कहा, इंतजार कहा, डराना एक अहम चीज़ है, बशारत भी चाहिए, मुबशरीन व मुनजरीन, बशीरन व नदीर, सब कुछ है, रहमतन लिल आलमीन है, लेकिन इंतजार के पहलू मद्दे नजर है। इसीलिए फरमाते हैं, इनको डराओ या मत डराओ, इन्हें क्या हिदायत करो ना करो, हिदायत पाने वाले नहीं है। वो कौन से कुफार है? वो कुफार है जो ढीठ है, किसी तरह से हक मानने के लिए तैयार नहीं है। सारे कुफार तो ऐसे नहीं है, कुछ कुफार ऐसे हैं जो किसी तरह से भी हक मानने के लिए तैयार नहीं है, एक फिक्री लिहाज से मसख हो चुके हैं, नई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ला यालमु बाद इल्मिन शेयन, इंसान उम्र करके ऐसे मरहला तक पहुंचता है कि कुछ समझने की सलाहियत उसके पास नहीं रहती, और दूसरा अमली लिहाज से इतने बदकिरदार हो चुके हैं कि अब किरदार, वो बदकिरदारी उनके वजूद का हिस्सा बन चुका है, उनकी फितरत में दाखिल हो चुकी है, उनकी तबीयत बन चुकी है। इसीलिए उसके खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आशा अरब के मशहूर शायर था, बहुत मशहूर, जिन उन छह शायरों में से एक था जिनके अशआर खाने काबे में आविजान थे और पूरी दुनिया ये अरब मानते थे उन्हें। अब वो मोमिन होने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए आया, मुशरिकीन मक्का ने यह खबर सुनी, परेशान हो गए, अब ये मुसलमान हो जाए बहुत से लोगों पर असर करेगा। तो क्या किया, चले गए उस जिस रास्ते से उसको आना था, उसके इलाके को जानते थे, वहाँ चले गए और उससे कहा, भाई तुम ईमान मत लाओ, पैगंबर के हज़ार बुराई की, तो नहीं माना, कहा कि नहीं मुझे यकीन आ गया, उस अरब के फंसे हुए बलीग था, कुरान को देखकर यकीन आ गया था पैगंबर ये कलाम कलामुल्लाह है, बशर का कलाम नहीं है। तो उन्होंने कहा, वो बड़ा शराबी था, तो उन्होंने कहा ये पैगंबर शराब को हराम समझता है, बहुत परेशान हो गया। कहा फिर मैं जाऊंगा, कोशिश करूंगा शराब को तर्क करने का, फिर आकर ईमान लाऊंगा। तो इसी शराब ने उसको वापस कर दिया और फिर वहां जाकर मर गया। ये तो ऐसी मिसाल, लेकिन आम तौर पर एक इंसान एक गलत काम करता है, फिर गलत काम को दोहराता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ा आना शुरू होता है, उसकी तबीयत में दाखिल हो जाती है, तो उस गलत काम को गलत नहीं समझता है, आहिस्ता आहिस्ता गलत का काम के खिलाफ कोई बात करे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता है। यही इंसान की तबीयत है ना, आदत करे तो फिर उसको गलत भी नहीं समझता, उसकी हिमायत भी करता है। कहते हज्जाज इब्न यूसुफ जो इतना शकी इंसान था, तारीख इस्लाम में उस जैसा शकी नहीं आया है, यानी जुल्म तशद्दुद के हवाले से, अगरची सबसे बदतर यजीद कह सकते हैं, लेकिन खुद अमलन जुल्म करने में हज्जाज जैसा नहीं आया है। हत्ता उमर इब्न अब्दुल अजीज क्या कहता है, सारे मुसलमान सारे अदयान वाले अपने गुनाहों को कयामत के दिन तराजू के एक पलड़े में डाल दें और हम सिर्फ हज्जाज इब्न यूसुफ के गुनाहों को दूसरे पलड़े में डालें तो हमारा गुनाह बढ़ जाएगा, इतना बड़ा मुजरिम। वो कहता है मैं जो लोगों को कत्ल करता हूँ, जुल्म करता हूँ, ये लोगों के मफाद में, ये लोग इसके इसी के मुस्तहिक है, वो अपने काम को सही समझता है, गलत भी नहीं समझता है। इसीलिए जब इस मरहला तक पहुँच जाए तो हिदायत असर नहीं करता है, इसीलिए हुक्म है ना फौरन। ये सिर्फ इस कुफ्र ईमान के नहीं, ईमान के बाद भी यही मसला है, गुनाह का असर ये है, इंसान मसख हो जाता है, चाहे फिक्री लिहाज से इल्मी लिहाज से वो गुमराह हो जाए, फिक्र खराब हो जाए, तब भी क्या है दीन से महरूम हो जाएगा, चाहे अमली लिहाज से किरदार के लिहाज से गलत हो जाए, जब तब भी दीन का इनकार करेगा, खुदा का इनकार करेगा। इस कुरान में इरशाद होता है, यस अल अयान योमल कयामा बल यूरीदुल इंसान लियफजुर अमामा, इंसान कयामत का इनकार करता है, इनकार करने की वजह क्या है, इनकार करने की वजह गुनाह करना चाहता है, गुनाह करने के लिए एक नजरिया बनाता है, भाई कयामत नहीं है, ठीक है। हमारे गालियों ने भी क्या किया, गुनाह करने के लिए कहा कि मुकस्सरीन अमल करे, हम लोग पहुंचे हुए लोग हैं, अमल की जरूरत नहीं है। तो ये तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है, मेरे वक्त हो गया है जी। तो ये इनको डराए या न डराए, ईमान नहीं लेंगे, सारे कुफार के बारे में नहीं है, कुछ सख्त काफिरों के बारे में फरमाए। पैगंबर के चचा अबू लहब था, चचा ही था, अबू लहब की कनीज ने पहले एक दो दिन हलीमा सादिया आने तक पैगंबर को दूध पिलाया है, सोएबन है, दूध पिलाया है पैगंबर को, पैगंबर के चचा था, अब्दुल मुतलिब के बेटा था, हजरत अबू तालिब की तरह अब्दुल मुतलिब के बेटा था, लेकिन वाहिद आदमी जिसका नाम आया कुरान में मजम्मत के साथ, तब्बत यदा अबी लहब, वजह क्या है, वही हालत है कि हिदायत के लिए तैयार ना हो तो हिदायत नहीं पा सकता। इंसान हर्फ हक लेने के लिए तैयार हो और जाहिर लेते वक्त तहकीक के साथ ले ले, लेकिन हर्फ हक कबूल करने के लिए तैयार हो तो उसकी हिदायत हो जाती है। वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।